अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः अंगश्यामलीं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जद्दञ्जारुडरोचिसं विदधतनुपट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिगशब्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दर्वेचितोज्ज्वलभुजम्
परम पवित्र तिथि ते प्रपूज्य चरण नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पासी श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज आर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पासी श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज ए दूजनेर तिरुभाव तिथि पूज्यपाद वामन महाराज एक बसर आगे तार तृतीय তারপরে ত্রিবিক্রম মহারাজ এই তিথিতেই অপ্রকট হয়েছিল ত্রিবিক্রম মহারাজ না পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজ আগে এক বছর আগে তারপর বছরেতে পরম পূজ্যপাদ এই দুজন আমার শিক্ষাগুরু বামন মহারাজের মা পরম ধার্মিক ছিলেন তার পুরা পরিবারই বামন মহারাজ তার প্রথম সন্তান অল্প বয়সেতে দ্বিতীয় সন্তান তিনি অল্প বয়সেতেই তাহার এই দ্বিতীয় সন্তান সন্তোষ নাম সন্তোষ কে নিয়ে গৌড়ীয় মঠে কলিকাতা আসেন প্রভুপাদকে তিনি দিবেন তখন আমাদের গুরু মহারাজ ওখানে ছিলেন গুরু মহারাজের হাতে সমর্পণ করলেন যে এই পুত্র আমি প্রভুপাদের হাতে দিলাম কিন্তু আপনার মাধ্যমে আপনি দেখা শোনা যাহে করবেন আপনি তখন থেকে এই সন্তোষ ব্রহ্মচারী গুরু মহারাজ কাছেই থাকতে লাগলেন এবং গুরু মহারাজ প্রারম্ভ থেকে তাকে ভক্তি বিনোদ ইনস্টিটিউশন মায়াপুরেতে তাকে দাখিল করে দিই আর প্রতিদিনে একটি শ্লোক করলে এই শ্লোক মুখস্থ করলে একটি লেমন জুস দিবেন এই লোক দেখি বাম মহারাজ সন্তোষ খুব মেধাবী প্রতিদিন ও 10-12-15-20 শ্লোক মুখস্থ একবার দেখলে হয় আর মুখস্থ হয়ে যায় এরকম ভাবতে মেধাবী ছিলেন ক্লাসেতে সবসময় ফার্স্ট ক্লাস আসতেন আর প্রতিদিন বৈষ্ণবদের জন্য পাতা দিতেন খাওয়ার জন্য গ্লাসেতে জল আর লেবু লবণ এই সবগুলি আগে থেকে সব দিয়ে রাখতেন
प्रसाद पावा कह दिले ताते कोई सब पाता
उठे परिष्कार बर्तन प्रतिदिन और प्रत्येक वैष्णव सेवा करते अब वैष्णव रहा के खूब प्रीति करते तापरे प्रभुपाद अप्रकट पर कुछ गोलमाल हलो गौड़ीय मठे सब छिन्न भिन्न हो जाए तखन गुरु महाराज आता गुरु भ्राता निये सब मठ छेड़े दिए देवानंद गौड़ीय मठ आस और ओखने थाका काले ही गुरु महाराज थाके परिणाम दे और तखन तिनी सन्यासी छिलेन ना सेई जन्य बोधाय ना किसे पूज्यपाद जाजौर महाराज निकटे के तिनी ताके दिखा दिया उपनय उपनयन दीक्षा तो तिनी दिए दिए छे उपनयन मात्र प्रदान कर लें आप बामन महाराज वही समय के 50-60 जन की कत लोग जेले छिलो तार जन्य रान्ना करते रान्ना कर दिए वकील बाजार हाट करते रान्ना करते अबर वकील का से फाइल लिए गेते अबर कोर्टे के तिनी उपस्थित होते जेले के तार प्रसाद लिए गेते सब लोग के तापरे हूँ जबन बाग बाजारे के श्री गौड़ीय वेदांत समिति स्थापन करा हलो तखन बहु लोग गुरु महाराज काछे आसतो रन्नी रन्ना इनी करते सब सेवा काज करते आरो दुए जन लोग सहायक छे ए समाधान 104 की 103 डिग्री जर आ सब वैष्णव राय से छे आईनी অসুস্থ হয়ে পড়েছে তখন গুরু মহারাজ এখন আর জ্বর তোর চলবে এখনই গিয়ে রান্না কর ওই 103 ডিগ্রি জ্বরেতেই একবারে চলে গেলেন আজ যে রান্না টান্না করে পরিবেশন করে খাওয়াইয়েছে তারপরে জ্বর নিজে থেকে চলে গেছে এরকম ভাবে সর্বগুণে গুণী তেনাদপি শুনে তররূপী সহিষ্ণু আমারি মানদিন আমি তার থেকে পথে উনি প্রথমে এসেছেন তারপরে পূজ্যপাদ বিক্রম মহারাজ তারপরে আমি এসেছি কিন্তু এই দুজন লোক আমাকে সম্মান দিত আমি তাদেরকে শিক্ষা গুরু মতন পূজ্যপাদ বামন মহারাজের কোন শিষ্য কোন কিছু নিয়ে যেত যে আমার এই অসুবিধা হয়ে আমি জানি না নারায়ণ মারে কাছে আমার পরামর্শ ছাড়া কোনো কিছু করতে না মন্ত্র দীক্ষা দিতে হলে প্রথমে এসে আমার ঘরে আমার কাছে অনুমতি নিয়ে তারপরে যেতে তিনি শুধু বাইরে গিয়ে প্রচার ইত্যাদি করতেন দু দু তিন তিন ঘন্টা তিন তিন ঘন্টা পর্যন্ত অনর্গল তিনি বলতেন মধুর ভাবেতে খণ্ডন করতে হতো তাহলে মধুর ভাবে খণ্ডন করতেন এইরকম ভাবেতে এত সহিষ্ণু অত্যন্ত অধিক সহিষ্ণু আমাদের মতন লোকে মান সম্মান দিতেন তিনি সবার সোসাইটিতে নিজে বলতে চাইতেন না আমার বলতে আপনি বলুন বহু সম্মান দিয়ে করতেন ঝগড়া হলেও ছেলেদের সঙ্গে পরস্পর আমার কাছে পাঠাইতেন বুঝে পারতে বিক্রম মহারাজ তাকে আমি শিক্ষা করে মনে করতাম কিন্তু অদ্ভুত তারা আমাকে এত সম্মান দিত এরকম ভাবে তাহাদের বহু গুণাবলী বিক্রম মহারাজের কাছ থেকে আমি কীর্তন শিখেছি পাঠ করতে শিখেছি ভিক্ষা করতেছি তার সঙ্গে ভিক্ষা দিতাম ভিক্ষা করে কলকাতা এদিকে ওদিকে এইসব যেতাম তাহাদের কাছে এক রকমের মানুষ হয়েছি তাদের ঋণ আমি শোধন করতে পারবো না অতএব তার সম্বন্ধে বলবো তার সেবকরা আছে
তাদের অনেক মনে আছে আমি ভুলে গেছি,
অতএব তারাই বলবে।
আমাদের যত 52 মহারাজের শিষ্য তার মধ্যে সবচেয়ে প্রথমে হরিদাস, এখন তার নাম হচ্ছে ভক্তি বেদান পুরি মহারাজ প্রাচীন, আর তার সম্বন্ধে জানে। আর ত্রিবিক্রম মহারাজকে শিক্ষা গুরু, আমি তাহার কাছে ত্রিবিক্রম মহারাজকে কেউ থাকতো না, দেখে বলে দিয়ে নবদ্বীপে বুঝিয়ে ত্রিবিক্রম মহারাজ কাছে চুচুড়ো পাঠিয়ে তার সেবা দ্বারা তাকে বশীভূত করেছিল, আর তাকে শিক্ষা এমন দিয়েছিলেন যে সে এখন ভালো বক্তা। আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছি সে কিছু পূজ্যপাদ বামন মহারাজ আর পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম মহারাজের সম্বন্ধে কিছু বর্ণন করে তার চরণেতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে।
আজ বড় সৌভাগ্যের দিন, আবার নিজ অর্থে বড় দুর্ভাগ্যের দিন। দুই ভাবে এটি অনুভব হয়, শিলা গুরুপাদ প্রথম তার সম্বন্ধে এবং মহারাজের সম্বন্ধে যতটুকু আমার স্মরণে আছে অল্প কিছু, তাদের কিছু গুণাবলী মহিমা নিজ উপলব্ধি কথা হয়ে স্মরণ করবো, তার দ্বারা নিজেকে আমি তিনি অত্যন্ত 9 বছর 9.5 বছর বয়সী তিনি মঠে আসেন পিসিমা সরদীপ পিসিমার সাথে। পূর্বে তার কাকামশাই ভক্তিভূষণ নরসিংহ মহারাজ তিনি রূপাদের আশ্রয়ে তিনি আছেন। তিনি খুব ছোটবেলায় মঠে এসেছিলেন, তিনি এসে সমস্ত বৈষ্ণবের নিকটে সেবার দ্বারা তিনি সবাইকে জয় করেছিলেন। তদ্বৃত্তি প্রতিপাদন পরিকৃষ্ণ সেবায়া, এই সেবাবৃত্তির দ্বারা তিনি সমস্ত বৈষ্ণবের হৃদয় জয় করেছিলেন এবং নানাভাবে তিনি তাদের দ্বারা পরিকৃষ্ণের মাধ্যমে বহু উপকৃত হয়েছেন। শ্রীল গুরু মহারাজ সর্বপ্রথম তিনি সমস্ত বৈষ্ণবদের কাপড় ধোয়া, সমস্ত বৈষ্ণবের পাত্রে জল প্রদান করা, তথা ইত্যাদি সেবা দ্বারা অধিকরূপে প্রসন্ন করেছেন। তারপরে তিনি পরমগুরুপাদের সঙ্গে তিনি গৌড়ীয় দ্বারস্থ সমিতিতে উপস্থিত হন। রূপপাদের কাছে তিনি হরিনাম গ্রহণ করেছিলেন, পরমগুরুদেবের নিকটে তিনি দীক্ষা পত্র নিয়েছিলেন এবং তিনি কখনো তার বিনয়কে ঔদ্ধত্যে প্রকাশ করেননি, বিনয়কে সবসময় সন্দেহ করে রেখেছেন, বিনয়কে গ্রহণ করে রেখেছেন। সমস্ত বৈষ্ণব সমাজে তিনি শ্রুতিধর এবং গৌড়ীয় বিস্তারী রূপে অর্থাৎ অভিধান রূপে সমস্ত গৌড়ীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি যা শ্রবণ করতেন তাই তিনি হৃদয়ে ধারণ করে রাখতেন। বিভিন্ন ভাষা আমি যে সমস্ত দেশে তিনি প্রচারে গেছেন, যে সমস্ত দেশে তিনি গমনাগমন করেছেন, সেই সব দেশের ভাষা, সেই সব দেশের সুন্দর সুন্দর কথা তিনি তার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বহু প্রকাশ করেছেন। সমস্ত বাংলা, আসাম এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামের সুন্দরবন ইত্যাদি অঞ্চলে তিনি বহু কষ্ট করে তিনি প্রচার কার্য করেছিলেন। তখনকার দিনে এত যাতায়াতের সুবিধা ছিল না, সেই সমস্ত জায়গায় অত্যন্ত পাহাড়ের মধ্যে তারার মধ্যে কষ্ট করে তিনি প্রচার করেছিলেন, হরিকীর্তন প্রচার করেছিলেন। তার সুমধুর বাণী শ্রবণ করে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে হাজারো হাজারো ভক্ত তার শরণাপন্ন হয়েছেন এবং তিনি সবাইকে ধন্য করেছেন। তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি দিনের অধিক দয়া করেন ভগবান, ঠিক তদ্রূপ তিনি অত্যন্ত দৃঢ়বৎসর ছিলেন, সাধব দৃঢ়বৎসরা। তিনি বিষয়ী ধনীদের যতটা বিবাহ করছেন তার থেকে দিনহীন গরিব তাদের নিকটে অধিক রূপে কখনো কখনো একা একা পর্যন্ত তার শিষ্য ভাই অথবা তার গুরু ভাই গুরু ভাইয়ের বাড়ি তিনি নির্বিঘ্নে তিনি পৌঁছে গেছেন। অত্যন্ত সাধারণ ভাবে তিনি জীবনযাপন করতেন, চরম বৈরাগ্যের মধ্যে দিয়ে কখনো বিলাসিতা তিনি জানতেন না। তার কোনো অসুবিধা হলেও তার সেবকদের কাছে কখনো প্রকাশ করতেন না, অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তিনি সেগুলোকে ধারণ করে রাখতেন, কাউকে বুঝতে দিতেন না। অত্যন্ত চাপা স্বভাবের জাতি বলায় অত্যন্ত চাপা স্বভাব তিনি পর্দারাশি বলে তিনি অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির, লাজুক প্রকৃতি তিনি নিজেকে কখনো অহং প্রকাশ করতেন না, সমস্ত বৈষ্ণবকে সম্মান দিতেন। এমনকি তিনি বলতেন গুরুর সেবা হয় মাত্র আপনার, গুরুর সেবা করুন সে ছোট হোক আর বড় হোক তিনি সবাইকে সম্মান দিতেন, আদর করতেন। এই জন্য সমস্ত গুরু ভ্রাতাগণ তার সাথে অধিক সময় দেখেছেন, ব্যয় করেছেন, তাকে পেয়ে তারা ধন্য মনে করেছেন। পরম গুরুদেবের অগ্রগতির পর তার সমস্ত গুরু ভাই তার স্মরণে শাসন ভজন করে তারা ধন্য হয়েছেন, তাকে কখনো ছেড়ে দিতে চাননি তারা বলছে। এমনই তার আকর্ষণ, এমনই তার গরিমা। প্রত্যেক গুরু ভাই এবং শিষ্য প্রত্যেককে পৃথক ভাবে তিনি সকলের খোঁজ খবর দিতেন, সকলের শরীর ভজনে ইত্যাদি কোনো অসুবিধা পৃথক পৃথক ভাবে তিনি সকলকে অত্যন্ত কাছে টেনে তিনি জেনে দিতেন এবং তা থেকে সমাধান করে দিতেন। গুরুপাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল বৃহৎ বিদগ্ন সেবা, অর্থাৎ সমস্ত গৌড়ীয় পত্রিকা, সমস্ত গুরুপাদের যে সমস্ত গ্রন্থ ইত্যাদি সব তিনি প্রকাশ করেছিলেন দিবারাত্র পরিশ্রম করে। এমনকি নিজে তখনকার দিনে ম্যানুয়াল প্রেস হাতে ঘোরানো চাকা সেই সমস্ত মেশিনের দ্বারা তিনি গ্রন্থ দিবারাত্র পরিশ্রম করে সেই সমস্ত ছাপিয়েছেন এবং এই বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা সহিত তিনি গ্রন্থ প্রকাশ করা তার একটা বিশেষ লোক ছিল। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি আমাদের সময় তিনি সবসময় গ্রন্থ প্রচার এবং গ্রন্থ প্রকাশ হয়ে জগতে বিতরণ করতে অধিক উৎসাহী ছিলেন। এই সেবাটি তার ছিল মুখ্যতম। তারপরে পরবর্তীকালে
নানা প্রকার বিষয় লোকের কামনা বাসনা এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সেটা গুরু পাদপদ্ম যদি ভজন করে না দেন তাহলে নিজে আত্মসাৎ করতে গেলে ওই রামানুজের শিষ্যের মতন পরিণতি মৃত্যু হবে, ভজনে বাধক সৃষ্টি হবে। সুতরাং তোমরা সব আমাকে সমর্পণ করবে, আমি তোমাদের কিছু সুবিধা অসুবিধা আমি অর্পণ করলে তার মধ্যে পা বা বীজ থাকবে না, তাকে কোনো দোষের হবে না। এইভাবে সমস্ত ছোট ছোট কথার মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে উপদেশ নির্দেশ দিয়ে আমাদেরকে বন্ধনে বেঁধে রেখেছিলেন। সন্ধান করে খুঁজে নিয়ে বলতেন কি দুঃখ হয় হয়, তিনি আমাকে ডেকে দিতেন কাছে নিয়ে
আমার জীবনের
তার ভিতর
সম্বন্ধে কিছু উপলব্ধি কথা আমাকে খবর খবর বলতে সে সম্বন্ধে একটু একটু দিন পার করি। তিনি যখন পূর্বাশ্রমে ছিলেন তিনি অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতি ছিলেন, খুব রসিক ছিলেন। কোন এক সময় স্কুলে যখন তিনি বিদ্যালয়ে পড়ছেন তিনি এক নম্বর সবসময় পাস ক্লাস পাস হতেন। তো সেই স্কুলে পড়ার সময় তার কোন শিক্ষক তার সংস্কৃতি অর্থাৎ স্মৃতি শক্তি কিছু দুর্বল ছিল, তিনি ম্যাথামেটিক্যালে খুব ফাস্ট হতেন কিন্তু যেখানে মুখস্থ করতে হবে ইতিহাসে তিনি সব থেকে কম নাম পাতেন। তিনি বলতেন এইটা আমার দুর্বলতা, আমি মনে রাখতে পারি না বেশি কিন্তু আমি বুদ্ধি রাখতে পারি। তাই ইতিহাস সাবজেক্ট এবং সংস্কৃত মুখস্থ বিদ্যার উপরে নির্ভর করে বেশি। কোন এক সময় তার সংস্কৃত শিক্ষক তাদেরকে সব শাস্তি দিয়েছেন আর তার ক্লাস কেউ করতেন না। ত্রিবিল কুমার তাকে তার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল রাধানা, তিনি ক্লাস করতেন না। তখন সেই হেডমাস্টার কাছে তিনি নালিশ করলেন যে আমার রোপেট হচ্ছে, আমার তো ক্লাস নিচ্ছে না, এরা পাস করবে কি করে? হেডমাস্টার ডাকতে বললেন পাশের যে একটু নাম্বার দরকার ওটা আমরা অর্জন করে নেবো কিন্তু রোজ রোজ ক্লাস করে দাঁড়ানো এ আমাদের পক্ষে সম্ভব না। তখন বললেন আচ্ছা এই নালিশ করার জন্য মহারাজ বললেন কি সেই সংস্কৃত শিক্ষককে তিনি কিছু যন্ত্র করতে চাইলেন। সেই পড়ুয়া অবস্থায় তখন তিনি বললেন কি একদিন সমস্ত মাথা কামিয়ে বিশাল একটা মাথায় শিখা টিকি রেখেছেন, পন্ডিত বোঝায় মাথায় টিকি ছিল, বিশাল একটা টিকি রেখেছেন আর ছেলেদের বলেছেন একটা ফুল মেলে দিয়ে গাড়া দিয়ে ভালো করে ফুল মেলে দিয়ে শিকাটা খুব খারাপ করে দিয়েছে আর সমস্ত মধুমঙ্গলের মতন যেমন সকাল নিয়ে সব ব্যালোপি করে হাসাহাসি করে পরিহাস করে ঠিক তাকে নিয়ে সমস্ত স্কুল চত্বরের মতো বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে তারা নিয়ে সব বই বই করতে লেগেছে, তাকে নিয়ে সমস্ত নাচানাচি করতে শুরু করেছে। এই দিকে তো পন্ডিত উৎসাহের অপমান। তিনি ক্লাসে এসে দেখছে কি ওই রকম অবস্থা, সামনে টেবিলের সামনে বেঞ্চিতে বসেছে আর শিকারকে তার রয়ে গিয়ে দিয়েছেন আর তারা সব নাচাচ্ছে। তিনি ক্লাস দিতে পারেননি, তিনি তৎক্ষণাৎ হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে নালিশ করতে পারেন এসব কি হচ্ছে স্কুলের মধ্যে এরকম। বলে কি হয়েছে? বলে শিকারে গেছে এরকম ভাবে আমাদেরকে ব্যবস্থা খারাপ কি করেছে, শিকারে গেছে তো ভালো করেছে। আচ্ছা ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। বলে হেডমাস্টার মশাই এসেছে অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতি, তার মুখে কেউ কোনোদিন হাসি দেখেনি, তিনি এসে ক্লাস দিতে এসে তিনি তার সেই মূর্তি রেখে তিলক লাগিয়েছেন, ঘন্টি লাগিয়েছেন, বৈষ্ণব সেজেছেন, এই প্রথম প্রথম বৈষ্ণব সাজলেন নিজে। দেখে তাকে দেখে এত হাসি এসে গেছে, এত তিনি আর এই ধরে রাখতে পারলেন না, সমস্ত বই দিয়ে মুখটা চাপা দিয়ে রেখেছেন, ক্লাস আর নিতে পারেননি। তিনি শেষ পর্যন্ত সেখান দিয়ে চলে গেলেন। পরবর্তীকালে আর পন্ডিত মশাই তার সঙ্গে আর লাগতেন না, তাতে আর কোনোদিন শাসন করতেন না, তিনি যেটুকু নাম্বার পাওয়ার ঠিক পেতেন। এই সমস্ত বহু সব বাল্যকালের ঘটনা আছে। পরবর্তীকালে যখন তিনি সন্ন্যাস নিয়ে অন্য অন্য সব বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হয়েছে সাধু আর করে বলে কি রাধানা সেই টিকি শেষ পর্যন্ত লাগলে? বললেন হ্যাঁ এটা তো আমি বুঝি, এর মধ্যে কিছু মহিমা আছে, এইটাই আমার জীবন ছিল। তারপরে এক সময় তিনি প্রত্যহ কালকা থেকে কলকাতায় রেগুলার সাইকেল চালিয়ে তিনি মামার বাড়ি যেতেন, কোথায় কলকাতায় কোথায় কালকা। কোন এক সময় সাইকেল কিছু খারাপ হয়ে যেতে তিনি ট্রেনে করে যাচ্ছেন, ট্রেনে যেতে যেতে লোকাল ট্রেনে যেতে যেতে তিনি পাশে এক ভদ্রলোক বসে আছে, বহু ডিস্টার্ব হচ্ছে, বারবার অস্থির অস্বস্তি প্রকাশ হচ্ছে, একবার এদিকে শুনছে ওদিকে ওনাকে ধাক্কা দিচ্ছে,
অত্যন্ত দুঃখিত।
সারা জীবন তিনি অনুষ্ঠান করতেন, তিনি বললেন আমি শেষ পর্যন্ত গুরুপাদ করতে গিয়ে বললাম
No. उनकी सेवा ही मेरी सेवा है और उन्हीं के के सेवा भार वहां संभाल करके उन लोगों को समर्पित करते हुए मथुरा में आए तब महाराज की आज्ञा के अंदर बेहन आती एक महीने बाद में तुम आ जाना मेरा मन हुआ किसी भी प्रकार से नहीं लग रहा जबकि गुरु जी ने चार महीने तक चार घंटे तक एक दिन समझाया और बोलते ही चले गए चार घंटा पूरा एकदम बोलते जाए मैं खड़े खड़े सुना अंत में गोपीनाथ गुरु जो जनार्दन आ रहा है वे बोले कि महाराज अभी तो आपको जाना है गाड़ी पकड़नी है तो आप विलंब क्यों कर रहे हैं अभी तो एक घंटा पहले किया प्रसाद दीजिए और गाड़ी पकड़ना और आप बोलते जा रहे हैं चार बजे से शाम को चार बजे से आठ बजे तक पूरा बोलते हैं तो गुरु जी ने मुझसे पूछा तुम मैंने चार घंटा बताया तुमने एक भी शब्द नहीं किया ना अपना बोला तुम्हारा क्या राय है तुम क्या बोलना चाहता है बोल मैंने कहा मैं जीवन में न महाराज जी को भूल सकता हूँ ना भूल पाता और ना तो मैं मन से हटा सकता तब गुरु जी बोले ठीक है जब हमने चार घंटा समझाया तो मैं इतनी मस्ती और तब तुम क्या उन्होंने फिर से कहा कि तुम आए रहेंगे जल्दी आ जाएगा तुम इन्हीं बात तब मैंने कहा कि हाँ गुरु जी अवश्य आऊंगा कभी भी आपको नहीं भूलूंगा पर महाराज जी को छोड़ूंगा इसी के साथ उन्होंने कृपा आशीर्वाद दी और उन्होंने एक मथुरा में भेजा फिर उन्होंने भी किराया लेकर के बोले कि जाओ तो मथुरा जाओ महाराज जी तो जबकि उनके विषय में महाराज ने अभी मनन किया है और उनको जीवन भर वही देखा कि वेदांत के अद्वितीय धुरंधर विद्वान वैदांतिक कभी कोई पूजा की बारी आती है लोग कहते हैं तुम पूजा करता नहीं है पूजा करने नहीं जाता अरे भैया क्या पूजा करो हमारे तो समझ में नहीं आ रहा फूलों का ढेर लगा दू कमरा भर दू उसमें भी तो पूजा नहीं होगी वेदांतिक पुरुष को कौन से वेदांत के द्वारा पूजा करो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या तो वैदांतिक पुरुष थे जब कभी हम लोग जाते थे तो ऐसे ऐसे शास्त्रों की बातें करते क्यों हम आश्चर्यचकित हो जाते कहां कहां से श्लोक बोल रहे मैंने एक दिन उनसे पूछा कि गुरु जी आप इतना श्लोक कहां से तब उन्होंने बताया कि जितने भी किताबें निकलती हैं सारी किताबों के लिए ये भी प्रमाण ढूंढना पड़ता है और उसके लिए गुरु जी बोले कि मैं वृंदावन गया रहनपुर है तो वहां जाकर के लाइब्रेरी में एक एक करके सारे किताबों को छापता था और एक एक करके पढ़ता था तो एक किताब शुरू से अंत तक संपूर्ण मेरा पढ़ना हो जाता और एक बार देखने से भूल जाता इसलिए सभी को किया तो इस तरह से संपूर्ण किया जबकि हम महाराज जी के पास में आए और सिर पर हाथ रख करके उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया था उस समय का आशीर्वाद जो कि उसी समय हम प्रतिदिन एक एक बार में पानी के एक एक बार में पानी नहीं एक एक श्लोक 50-60 बार में पानी भरना पड़ेगा तो 50-60 श्लोक एक साथ में याद करके महाराज जी को 7 बजे सुनाना पड़ेगा तो अब गुरु जी का आशीर्वाद हम लोग यही देखते हैं उससे पहले हम एक श्लोक भी याद नहीं कर पाते थे तो आराम भूल जाते थे बोलते समय और उस समय हंसी होती थी हरे कर पंपा डडन मैं भी ये भी नहीं समझता था हरे कर पंपा डडन अब मतलब क्या है क्या बोल रहे तू हंस रहे और फिर हमने देखा गुरु जी के कृपा आशीर्वाद क्या होता है वेदांत ने कहा है नामात्मा प्रवचनी लभ्य भगवान श्री हरि प्रवचन समर्पण करता है तो उसके समर्पण से ही पता चलता है कि कितना समर्पित है, यही देते हैं गुरु, यही देते हैं महाराज, यही देते हैं कि कौन कितना रुपये दिया, कौन कितना धन दौलत दिया, कौन कितना क्या दिया और कौन कितने सेवा की। पर देखते हैं उसके स्वरूप निष्पक्षपाती, कितना समर्पित आत्मा। जब यही समर्पित आत्मा हो जाता है और शरण निष्पक्षपाती को देते हैं तब उनका आशीर्वाद अधिक होता है। गुरु जी कहते थे बिना गुरु की कृपा के भगवान की कृपा कदापि संभव नहीं। गुरु जी के भाषण का एक ही उद्देश्य रहता था, हमेशा एक ही बात कहते थे कि वैष्णव धर्म अनुगत का धर्म, वैष्णव धर्म अनुगत का धर्म, जिस दिन अनुगत छूट जाएगा उस दिन भजन साधन समाप्त होगा। और यदि अनुगत में रहा तब सभी कुछ संभव है तो भजन में आगे बढ़े। अनुगत में ही होकर के कभी भजन साधन नहीं हो सकता है। यहाँ पर दुर्वारों से और वहां पर ऊपर ऊपर के जितने भी सभी मंदिर या सबके आश्रय और अनुगत में ही जाना पड़ेगा, तब आप आदर की सेवा और रंगधार सेवा में। अतएव अनुगत वैष्णव धर्म का मतलब है कि अनुगत वैष्णव। इसलिए प्राय करके राष्ट्रपति अध्याय के उस श्लोक का वर्णन किया करते थे, सत्य विभाषण में ही देखा जाता था श्रद्धान्वितो अनुश्रेणिया अथ वर्णनी, श्रद्धायुक्त होकर के अनुश्रेणिया अनु अनुगत में श्रीमा पहले गुरुमुख से श्रवण करे, गुरु की सेवा करे, उन्होंने अपने जीवन में गुरु की सेवा का आदर्श दिखाया। आज बहुत से लोग हम लोग भजन करने आए हैं और सेवा से हम दूर भागते हैं, अपने को छिपाते हैं कि हम क्यों करें, दूसरे का रहकर दूसरे वाले रहकर हम क्यों करें, हम अपने बच्चे खाने के लिए हमेशा प्रयास करते। पर गुरुवर्य के जीवन में देखा जाता है जीवन समर्पण किया सेवा के लिए, मन बिता दिया, अंगुली कट गई तो भी सेवा में नहीं, पर सभी लोग रो रहे हैं दुखी हैं, कभी भी सेवा से वंचित या दूर नहीं और जीवन भर सेवा में नहीं। इस प्रकार गुरु की सेवा और नवजी देवानंद को लिखा रहता था गुरु की सेवा करने वाला व्यक्ति ही भगवान को समझ पाएगा और उन पर उनकी कृपा अनुभव कर सकता है, अन्यथा भगवान को कोई नहीं अनुभव कर सकता। गुरु जी ये भगवान को दर्शन करना है कान से आंखों से नहीं, सारी बातें लिखे। और गुरु जी का ये कहना था कि हरि गुरु वैष्णव तीनों का अनुगत, कि हरि को छोड़ करके गुरु नहीं, गुरु को छोड़ करके वैष्णव नहीं। जो कोई व्यक्ति वैष्णवों का सम्मान नहीं देगा वो गुरु का सेवक नहीं बन सकता। गुरु जी कहते थे बोले देखो कांडारी भंडारी और बुलारी, तो गुरु सेवक और भंडारी और मंदिर के पुजारी ये तीनों व्यक्ति बहुत जल्दी ऊपर उठते और बहुत जल्दी ये नीचे गिरते, जितना जल्दी ऊपर उठते उतने ही गिर जाते। और जो कोई व्यक्ति बड़े साधन से रहेगा तो उसको अभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। पहले मैं जब भंडार में था तो नवोदय में खूब बिगड़ता था, छोटा बच्चा था उस समय और खूब बिगड़ता था, सभी लोग डरते और नहीं तो कंप्लेन हो जाता था शिकायत कर तो सभी डर जाते थे। तो एक दिन गुरु जी के पास में पहुंचे कोई खबर पड़ गया तो गुरु जी ने कहा कि देख तुम्हारा सब सही है तुम बिगड़ जाता है, तो बहुत जल्दी बिगड़ता है, तुम मेरा स्मरण लेना, जब तुम्हें बिगड़ना होगा उस समय मुझे स्मरण कर लेना तब तुम्हारे प्रोत्साहित हो जाएगा बिगड़ना नहीं, क्योंकि ये सभी वैष्णव है सबके प्रति आदर करना संतोष। इस प्रकार गुरु जी जब कभी हम लोग जाते थे कोई ना कोई नई नई बातें अवश्य सिखाया करते। गुरु जी के जीवन में एक अभिलाषा, उन्होंने एक दिन कहा कि परम गुरु महाराज जी के समय से ही बोले कि वेदांत पर समय निकल गया और
इस पर हम क्या कहेंगे राघवन बैठा
तो हम समझते नहीं कि ये
राघवन बैठा है
पर होता ही नहीं है पर समझ में नहीं आता
पर तो ये नहीं देखा कि देवी वेद के मंत्रों में लिखा गया है ऐसे मंत्रों में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है एक भागवत की लीला का एक भागवत में ऋग्वेद और यजुर्वेद से श्लोक दिखाया उस पर उस दिन में उस दिन जैसे बोलेगी है इस पर लिख दो और पर तो बेटे बेटे ये लिख लिख देगा कि उस वेद उस मंत्र में बहुत सुंदर गिरिराज गोवर्धन के विषय में वर्णन किया हे गोमते हे गोमेश्वर हे श्री कृष्ण आप हम सब को गिरिराज जी की पूजा में आप नियुक्त कर रहे हैं तो हम देवराज इंद्र की पूजा भक्त करके आपकी पूजा करने जा रहे हैं तो उसमें ये वर्णन है कि हे गिरिराज जी आप हम सबकी रक्षा करें हमारे गोधन को वृद्धि करें अकाल मृत्यु न हो रोग बीमारियों से दूर रखे और हम सब आपके चरणों में शरणागत हैं फिर एक श्लोक में दिखा रहे हैं हे देवी सर्वो देवी हे देवी अर्थात हे प्रतियोगियों हे श्री राधे के इतनी कृपा हो जाए कि आपके युगल चरणों में हमारा प्रेम हो आपके चरणों में हम हास्य इस तरह बना
जब कभी कोई बात हुई तो ऐसे ऐसे सिद्धांत की विचारों के बातों को हम लोगों को देने के लिए बड़ी उत्साही उत्सुक थी। जब कभी सनातन धर्म के विषय में विचार होता था बाहर में भाषण में सनातन धर्म पर रोते थे और सारे आचार्यों के विचारों को खंडन करते थे। इस प्रकार हम लोग को बहुत सारी शिक्षाएं थी उनकी अपार करुणा और अपार स्नेह और अनन्य ममता आज भी हम सब के जीवन के साथ है। इसलिए आज हम लोग अभी भी जी रहे हैं और उनके कृपा के कारण हमारे के चरणों के आश्रय में हम लोग उनकी छत्र छाया में चरण छाया में हम लोग जी रहे हैं। इतनी कृपा करते कि एक भी साधु तो नहीं बन पाएंगे पर मनुष्य और क्या देना है भी जानते हैं, क्या होना है भी जानते हैं। जैसे भी चाहेंगे वैसे
और सुनकर वो क्या है जे ये जन से जन अमित राधा पद दासी महाराज और हमें बात भी बात होता। वो बोलते मैं खंडन करता मैं बोलता तो वो खंडन करते। तो पूज्यपाद पवन महाराज जी इस विषय वो कृष्ण के पक्षपाती हम राधा जी के पक्षपाती अंत में वो सामंजस्य करते थे। वही अमित राधा पदोदासी पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज तब शांत हो जाते। प्राय उनसे हमसे बात भी बात होता था किसी भी विषय के जब रहेंगे दोनों आदमी भाषण देंगे तो जरूर हमारे विरुद्ध कुछ बोलेंगे और हम उसका विशेष करके त्रिविक्रम महाराज से हमसे समुद्र गढ़ी में बहुत बहुत विचार
कैमन दिला
किंतु हमने देखा है हम उनको तो शिक्षा गुरु मानते थे किंतु त्रिविक्रम महाराज कभी कभी साष्टांग दंडवत प्रणाम दूर से करते थे।
नवद्वीप में देखा आपने खड़े प्रणाम करके जाते मंगलाज के बाद
ये लोग वैष्णव का आदर्श है। गुरु सेवा के लिए प्राण प्रत्याग करने वाले ये लोग थे। एक बार बामन महाराज जी का हाथ प्रेस में चला गया कट गया यांगून। गुरु महाराज सुनते हैं दौड़ करके आए उनको रोने लगे और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में ले गए फिर हाथ ठीक करा करके फिर लौटे। उनके प्रति इतना उनको स्नेह था। एक बार टीबी रोग हो गया लेकर के कहां चले गए हिमालय की तरफ में कहा और वहां पर उनकी चिकित्सा कराई। पहले बहुत दुबले पतले थे बहुत दुबले पतले पीछे से वो फिर मोटे ताजे हो गए। तो इस तरह से बहुत से स्मृतियां हैं परम वैष्णव लोग। आजकल लोग गुरुकरण करते हैं गुरु का आदेश ही नहीं पालते। हम घर जाएंगे आप यदि ऐसा कहेंगे तो घर जाएंगे तो घर छोड़ करके आया किस लिए ऐसे भगवान की कृपा हो जाएगी। त्रिविक्रम महाराज हमसे बोलते थे जे आप आज जो सारे विदेश में देश में प्रचार कर रहे हैं उसका एक मूल कारण मैं जानता अपने गुरु जी की सेवा के लिए मृत्यु के मुख में आप चले। टीबी रोग था अनंत प्रभु का और उनके मुख से सब समय रक्त गिरता था और कोई नहीं निकट में जाता था। मैंने सेवा मांग करके जब मैं इसकी सेवा करूंगा तो हमारे ऊपर में छोड़ करके प्रचार करने के लिए वो जाने लगे। अंत में वो बचे नहीं, किंतु गुरुवर जी की महिमा ऐसी देखी मरते समय में हा गुरुदेव हा गुरुदेव हा बाबा बाबा गुरु जी को बाबा करते और राधा कृष्ण मुझको वृंदावन में बुला रहे हैं। डॉक्टर लोग देख करके स्तंभित रहे, गुरु जी मुझको वृंदावन में बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूं। मैंने कहा जी प्रभु आप तो जा रहे हैं, हमको भी याद करें, उनके चरणों में निवेदन करेंगे कि हमको भी बुलाएं वृंदावन। गुरु जी की सेवा का ये फल है, निरक्षर कुछ नहीं जानने वाला, गुरु जी की बस सेवा किया और गुरु जी की कृपा से वृंदावन में अजामे की जदि गति या उस तरह से होती, इसकी गति क्या होगी। राधा कृष्ण साक्षात दर्शन दे करके कह रहे हैं जे वृंदावन में मुझको बुला रहे। कभी तो लोगों को गुरु सेवा के ऊपर में श्रद्धा नहीं, जो गुरु जी की सेवा नहीं करेगा, आदर्श उनके आदेशों को पालन नहीं करेगा, क्या भजन वो कर सकता है, बल्कि उल्टे उसको अपराध के कारण में नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए खूब सोच समझ करके गुरु सेवा करो। गुरु भी सदगुरु होना चाहिए, जैसा तैसा नहीं, गुरु भी सदगुरु रसिक विद्वान सर्वशास्त्र पारंगत शिष्य के संदेह को दूर करने वाला विषयों से अनुसर, ऐसे गुरु की सेवा करने से निश्चित रूप में भगवान की प्राप्ति। तो इन दोनों में ये सत्य, जब तक हम लोग तीन आदमी थे गौड़ीय वेदांत समिति ठीक रही, और जहां वो लोग गए बस सब नष्ट भ्रष्ट होकर के चौपट हो गए। तो तुम लोग शिक्षा लाभ करो, सहिष्णु बनो, गुरु सेवक बनो और भजन करो। जो गुरु सेवा नहीं करेगा उसको भजन नहीं हो सकता। गुरु सेवा इज द बैक बोन ऑफ भक्ति, इसलिए याद रखो गुरु जी के आदेश को उल्लंघन मत करना, जो शिक्षा देते हैं उसको ग्रहण करो। आज 8 बज गया, शाम को बहुत से और लोग हैं, उनके शिष्य हैं, वो शाम को बोलेंगे, हम लोग 5 बजे के पहले ही आ जाएं और बाकी सब लोगों को अवकाश मिलेगा जो वो भी उनके चरणों में पुष्पांजलि दे सके। अभी हम लोग उन लोगों के चरणों में पुष्पांजलि अभी देंगे, उनका ये हो गया है पर्चन।
Srimad Gurudev left the mat and established Vedanta Sakriti. At that time, he took Harinam from Srila Prabhupada and took Upanayan Samskar from Pujapati Yavat Mahapala. And afterwards, he took Disha Payam Sripam Gurudev. At that time, someone made a false case against Srila Pan Gurudev. And Pan Gurudev and 30 or 40 Vaishnavas were put in jail. At that time, Santosh Brahmachari, he took full responsibility for the deep seva, full collection, for cooking prasad, bringing the Vaishnavas in jail, arranging the court case. One time he had a very high fever of 103, and some Vaishnavas came. That time, Pan Gurudev said to Santosh Brahmachari, "Oh, there's no time for fever now. There's so much seva to do." So quickly he stood up from his seva and cooked for all the devotees. Therefore, Guru said, "Even though I respect and like Shri Guru, then both Srila Bhaktivinoda and Srila Chukramaraj used to respect me so much. If any disciple would come to Srila Bhaktivinoda, then Srila Bhaktivinoda said, 'I don't know anything, you go to Srila Bhaktivinoda.' Therefore, Srila Bhaktivinoda, even if he would chastise someone, he would chastise them very, very, very sweetly. And even though he was Savapati, the senior Vaishnava, then Srila Bhaktivinoda would always make Gurudev and other devotees speak first. Gurudev said, 'Srila Bhaktivinoda always had so much respect and affection for me.' He said, 'Srila Bhaktivinoda came first in the month, then Srila Chivikamaraj, then Gurudev said, last I came. Therefore I learned everything from Srila Chivikamaraj. How to perform kirtan, how to sing, how to give pramachan, how to preach, how to collect.' And Gurudev said, 'We would always find something to argue about in a loving way.' Therefore, Srila Bhaktivinoda, how he gave his life for the service of his Guru. One time, in Bengal, they had the old style printing presses. One time, his hand was caught in the plate, and his finger was cut. So Srila Padmagurudev, when he came there weeping, and took Srila Bhaktivinoda on his lap and took him to Calcutta, to the hospital. One time also, he had tuberculosis, and Srila Padmagurudev took him to the Himalayas. So Srila Chukramaraj used to say, 'My Gurudev, I know why you are so successful in your preaching, why people from all over the world are attracted to you. Because you went in the mouth of death in the service of your spiritual master.' We know that history. Srila Pada Gurudev's first seva, his name was Sri Ananda Mohan Brahmachari. That time he had tuberculosis. Blood was always coming from his mouth. All the other devotees would stay very far away from him because he had tuberculosis. But Gurudev said, 'That time I took responsibility for his service.' Srila Chagamaj told that history to me also. But now I know that Gurudev, by that service, he also caught tuberculosis. But by the grace of Guru Gauranga, then Gurudev was saved. That time, Gurudev said, 'We can see the results of Guru Seva. Sri Nanda Mahaprabhu, when he was leaving his body, that he was calling his Gurudev. Not Gurudev, but Baba, Baba, oh Father, oh Father. That time he was calling, 'Oh, Nityananda is taking me to Vrindavan. Radha Krishna are taking me to Vrindavan.' The Guru said, 'Just see the glories of Guru Seva.' Ananda Mahaprabhu could not write his name. He was completely illiterate. But at the time of leaving the world, Radha Krishna gave him direct darshan and took him to Vrindavan. Guru said at that time that he put his head on the feet of Ananda Mahaprabhu, 'Guru, now you are going to Goloka Vrindavan. You could make some reservation for me.' So those persons these days so many people accept Guru but do not follow the instructions of Guru. If Guru gives an instruction, they say, 'Oh, I'm not following this, I'm going back to my village.' The Guru said that, 'For what reason you came to the mat if you're not going to obey the order of the spiritual master?' Therefore, if those who have no faith in the instruction of the spiritual master, nor do they follow his order, then what bhajan will do? That bhajan is just a pretense. But Guru should be a sadguru. He should be completely expert in all the scriptures. That Guru should be able to dispel the doubts of disciples. The Guru should be expert in everything and self-realize self. By serving that type of spiritual master, Bhagavan will be easily achieved. Therefore, Guru said, we have to learn how to tolerate. We have to perform Guru Seva. And we have to do our own bhajan. And we should never in dreams disobey the order of the spiritual master. God Devanandi.